प्रिय मित्रों नमस्कार। EFEIS के आज 11 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही तीन मित्रों का भी स्वागत करता हूं। ये मित्र हैं नीरव कुमार यादव वाराणसी उत्तर प्रदेश से, विनय सोलंकी मुलताई मध्य प्रदेश से और उपेंद्र साव गिरिडीह झारखंड से। इन मित्रों ने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मित्रों एक सूचना है और ये सूचना विशेषकर हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है। हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट को हर महीने एक करेंट अफेयर्स का एक आप कह लीजिए कलेक्शन, लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड कलेक्शन अवेलेबल कराते हैं। तो दिसंबर में जो आपको कलेक्शन अवेलेबल कराया जाना था, सूचना यह है कि वो आपको दे दिया गया है। आप सब उसे देखें, ध्यान से देखें। और आपको मालूम है कि चूंकि ये दिसंबर में अवेलेबल कराया गया है, तो इसमें जो घटनाएं हैं वे नवंबर की हैं और इस लिहाज से हैं कि जो प्री एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं और जो मेंस में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो कलेक्शन है ये बहुत जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हीं का ही कलेक्शन है। तो मित्रों ये छोटी सी सूचना थी। मुख्य विषय के बारे में मैं आज आप सबसे न्याय में मध्यस्थता के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और आज मेरे पास ऐसी घटनाएं काफी हैं। न्यूज में आपने सुना कि हमारे संसद ने 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। 126वां संविधान संशोधन आप याद रखिए। और इसमें व्यवस्था ये की गई है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनके आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि 2030 तक उन्हें आरक्षण मिलता रहेगा। आपको मालूम है कि हमारे संविधान में कुछ समय के लिए ही उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और यह था कि बाद में सरकार अपने ढंग से उस पर निर्णय ले सकती है, तो 10-10 साल के लिए वो लगातार बढ़ाया जाता रहा है। तो अब इसे बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है। याद रखिए संविधान संशोधन का जो नंबर है वो है 126वां। मित्रों जो दूसरी घटना है वो यह है कि मानव विकास सूचकांक जो UNDP यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम इसका शॉर्ट फॉर्म है UNDP। ये जो UNDP है ये हर साल मानव विकास सूचकांक जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी इसने यह सूचकांक जारी किया है, 189 कंट्रीज में भारत का स्थान है 129। ये आपको मालूम होना चाहिए, 129th रैंक भारत की है। और UNDP के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसका काम है कि जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां जो गरीबी है उसे समाप्त किया जाए, वहां जो असमानताएं हैं उन्हें कम किया जाए। और ऐसा कैसे करेंगे, तो वहां का धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। यहां मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि ये जो मानव विकास सूचकांक है इसे जो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इन्होंने यह अवधारणा दी थी। और जो ये मानव विकास सूचकांक में जिन बातों को लिया जाता है उसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरे वहां शिक्षा का स्तर क्या है और तीसरा है वहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है। मतलब ये मेजर तीन बातें हैं जिनको लेकर के इस इंडेक्स तैयार किया जाता है। दोस्तों मैं थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो संदर्भ के रूप में काम आएंगे, यानी कि जब आप अपने आंसर लिखेंगे तो उसमें इन संदर्भों को आप डाल सकते हैं। मैं एक दो आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो न्यूज़पेपर से मैंने ली हैं। एक नाम है सना मरीन जो 34 साल की हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, सबसे कम उम्र की बनने वाली प्रधानमंत्री सना मरीन। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां वो ये है कि फिनलैंड में जो अभी चुनाव हुए तो वहां के संसद में 200 सदस्य होते हैं जिसमें 93 महिलाएं जीत कर आई हैं, 200 में 93, तो अच्छा रेफरेंस है। और अभी जो सरकार बनी है जिसकी हेड है सना मरीन, वो पांच महिलाओं ने ही मिलकर के सरकार बनाई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो पांचों महिलाएं अलग अलग राजनीतिक दलों की हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी गठबंधन की सरकार है, राज्यों में है, बनने की स्थितियां भी बनती हैं, और इसके बाद फिर महिला सांसद हमारे यहाँ कितनी है, महिला एम्पावरमेंट को लेकर के भी बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये रेफरेंस आपके काम आ सकता है यदि आप इसे नोट कर ले तो। दोस्तों एक और रेफरेंस आपको मैं देना चाहूंगा, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं, बस अभी मतदान होने ही वाला है कुछ समय में। ब्रिटेन की जो आबादी है लगभग 6 करोड़ की है, जिसमें 2.5% जो नागरिक है वो भारतीय हैं, 2.5% काफी ठीक ठाक संख्या हो जाती है। वहां अभी जो चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह कि उसमें दोनों पार्टियां भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं जिन क्षेत्रों में भारतीयों की संख्या अधिक है। एक पार्टी अभी जो वहां के प्रधानमंत्री जॉनसन, उन्होंने तो बकायदे हिंदी में ही नारे और गाने और इस तरह से तैयार कराए हैं भारतीयों को रुझाने के लिए, और जो दूसरी पार्टी जो लेबर पार्टी के हैं वो बकायदे अपने चुनाव में ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम जलियांवाला बाग में जो भी इससे पहले ब्रिटेन की सरकार ने किया है उसके लिए औपचारिक रूप से माफी मांगेंगे। अब आप देखिए कि कैसे भारतीय कितने प्रभावशाली होते जा रहे हैं ब्रिटेन के चुनाव में, और अमेरिका के चुनाव के बारे में तो आपको मालूम है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो वो बकायदे ह्यूस्टन में पहुंचे ताकि वो भारतीयों के प्रति अपनी जो सदाशयता है वो दिखा सके। तो ये डेमोक्रेसी होती है, और आप इसे इस रूप में भी ले सकते हैं कि किस तरह से भारत हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो विदेशों में रह करके भारतीय जो राजनीति है आप कह लीजिए राजनीतिक दृष्टि से भी वो प्रभावशाली हो रहे हैं और भारत की जो इमेज है उसे निखार रहे हैं। दोस्तों एक खबर अभी आप और भी पढ़ रहे होंगे, देखते हैं बाद में हम लोग उस पर कभी बात करेंगे, वह पानीपत फिल्म जो अभी आई है उसका काफी विरोध हो रहा है, खासकर राजस्थान में बहुत विरोध हो रहा है, और इसमें वो भावनाओं को ही आघात की बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल मैं अभी आपको सूचना दे रहा हूं, अगर बात कुछ और आगे बढ़ेगी तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि 2 साल पहले बकायदे इसी से संबंधित एक प्रश्न मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। एक खबर आपको और देना चाहूंगा, वो खासकर देख रहे हैं कि जब नागरिकता संशोधन विधेयक अभी पारित होने को ही है तो उसको लेकर के स्पेशली उत्तर पूर्व में बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा है ना। विरोध होने की आपको बहुत सी चीजें सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को भी मिल रही होंगी, लेकिन उसका जो बेसिक पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो ये है कि उत्तर पूर्व के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको इस बात की आशंका है कि वहां जो पहले से लोग आए हुए हैं अगर उनको नागरिकता दे दी गई और ये प्रोविजन इस विधेयक में है तो जो वास्तव में अभी तक रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इसका उन्हें बहुत ज्यादा डर है, इसीलिए वो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये तथ्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और भी दूसरे बहुत से पॉइंट्स हैं लेकिन बेसिक पॉइंट्स में कभी भी चूक नहीं होनी चाहिए और न वो हमारे लिखने और बोलने में छूटना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। देखिए इस मुख्य विषय का चुनाव मैंने क्यों किया है, आपने खबर पढ़ी होगी कि हमारे जो न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जब जोधपुर हाई कोर्ट के भवन के उद्घाटन के लिए गए थे तो वहां उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो मुकदमे होते हैं उन मुकदमों में मध्यस्थता होनी चाहिए, यानी कि वो जो मुकदमे होते हैं जैसे मुकदमा तो कोर्ट में दायर हो गया, इससे पहले जो मुकदमे दायर होते हैं उन दो वर्ग हैं जो दो पार्टी हैं उनके बीच में मध्यस्थता की कोशिश की जानी चाहिए, यानी कि कोई एक ऐसी संस्था हो ऐसे व्यक्ति हो जो उन दोनों में सुलह कराने की कोशिश करें, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करें, और यदि वह उसमें सफल हो जाते हैं कोशिश में तो बकायदे उन्होंने जो कोशिश की है यानी कि जो नतीजे निकले हैं उसे बकायदे अदाल जो न्यायालय के फैसले होते हैं उनके जैसी मान्यता दी जानी चाहिए। उनका यह कहना था कि यदि ऐसा किया जाता है तो न्यायालयों में बहुत कम मुकदमे आएंगे। देखिए अभी हम न्यायालय में लगातार इस बात को मान रहे हैं कि उस पर बहुत ज्यादा बोझ है, मुकदमों का बहुत बोझ है, लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। नतीजा क्या होता है कि न्याय मिलने में देरी होती है, और यह कहा ही जाता है कि यदि न्याय मिलने में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि न्याय नहीं मिलने के बराबर है, और आप देखिए कि खासकर अभी जो हैदराबाद में जो दुष्कर्म का मामला हुआ है और उसमें जहां तक कहां तक स्थिति मुठभेड़ तक आ गई और उसको लेकर के जो पूरे के पूरे देश में जो आक्रोश है और मुठभेड़ में जो लोग मारे गए हैं सच पूछे तो उसके प्रति एक प्रकार से सहमति है, तो इसका कारण क्या है, इसके केंद्र में क्या है? तो आप पाएंगे कि इसके केंद्र में यही है कि यदि यह मामला न्यायालय में चलता रहा तो 5 साल 10 साल 15 साल पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। और लोगों का मानना है कि चूंकि न्याय मिलने में देरी होती है इसीलिए जिन्होंने अपराध किए हैं उनके मन में भी कोई ऐसा भय नहीं रहता, लगता है कि चलो 10-15 साल तो और अभी जी ही लेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं नहीं करने वाले हैं हो सकता है आगे चल करके करें तो उनके मन में भी कोई ऐसा भय नहीं है कि अगर हम पकड़े गए तो पता नहीं क्या होगा। देखिए न्याय की दो स्थितियां होती हैं, पहला तो यह है कि ठीक है उसे अगर कोई अपराध उसके सामने आता है तो वह उसका विवेकपूर्ण तरीके से न्याय करेगा, न्याय देगा, जिसके प्रति अन्याय हुआ है उसे न्याय उपलब्ध कराएगा। दूसरा इसका यह भी उद्देश्य माना जाता है कि लोग अपराध करने से अपने आप को रोकें, यानी कि अपराध के प्रति उसके उनके मन में भय की भावना पैदा हो। लेकिन हमारे यहां अभी ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मध्यस्थता की बात कही और जो पश्चिमी राष्ट्र हैं मतलब जो बहुत ही विकसित राष्ट्र हैं आप कह लीजिए, वहां इस तरह का प्रोविजन है कि बकायदे वहां मध्यस्थता में उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाती है और यही कारण है कि बहुत से मामले वहां सुलझ जाते हैं और न्यायालय तक तो बहुत कम मामले पहुंच पाते हैं। सच पूछिए तो भारतीय समाज की जब आप स्थिति देखेंगे तो वहां भी यह हमारी चेतना में मौजूद है, पंच परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। गांव के बड़े बूढ़े लोग इकट्ठे हो जाते थे और अपने अपने गांव की जो समस्याएं होती थी, जो झगड़े होते थे उसका वो निपटारा कर दिया करते थे। परिवारों में भी आप देखिए कि बड़े बड़े धन के जो बंटवारे होते हैं परिवार के आपस के लोग मिलकर के कर लेते हैं, शादी ब्याह के जो झगड़े होते हैं आपस में मिलकर के लोग कर लेते हैं। तो मध्यस्थता तो हमारी चेतना में मौजूद है, अब सवाल यह है कि उसको रिस्टैब्लिश कैसे किया जाए। तो बकायदे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए और हमारे जितने भी जिले के लेवल पर अदालतें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहां संस्थाएं हों, साधन उपलब्ध कराए जाएं, जो भी न्यायालय में जाते हैं पहले उन्हें समझा बुझा करके उनके मामलों को सुलझाने की कोशिश की जाए और यदि वो सुलझ जाता है तो उसे अदालती फैसले की मान्यता दी जाए। हाँ, जब यदि नहीं सुलझ पाता है तो ठीक है फिर वो कोर्ट में। तो इससे देखिए क्या है कि एक सामाजिक समरसता की भी स्थिति बनेगी, क्योंकि अगर दो लोग आपस में सुलह कर लेते हैं तो कम से कम कड़वाहट की वह स्थिति तो नहीं आती जो अदरवाइज आ जाती है, उस कड़वाहट से भी बचेंगे, मामले का बहुत जल्दी निपटारा भी हो जाएगा। क्योंकि जब देरी से न्याय मिल रहा है तो ये जो दो लोग उलझे हुए हैं इनका भी धन भर खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है और यदि उसमें कोई संपत्ति का मामला है तो आप उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें भी लाभ होगा और सही मायने में समाज में जो रियल जस्टिस होते हैं जिसे वास्तविक न्याय कहते हैं उस वास्तविक न्याय की उपलब्धि भी हो सकेगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और सच पूछिए तो हमारी जो लोक अदालतें हैं काफी कुछ इसी अवधारणा पर काम भी कर रही हैं, लेकिन यदि इसे सेशन कोर्ट तक पहुंचा दिया गया तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये विचार होगा और आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस विचार को आप सब नोट कर लें, बकायदे रेफरेंस के साथ नोट कर लें ताकि यदि न्यायिक सुधार के बारे में कोई प्रश्न कभी पूछा जाता है या निबंध ही आ जाता है तो उसमें आप इसका उल्लेख कर सकें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आज उसकी संख्या कुछ ज्यादा ही है आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं, खुशबू सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से, मंगला देवी, भूपेंद्र सिंह अहरी हरियाणा से, ललिता गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से, हरमनिंदर सिंह, विवेक कुमार, सौरभ, गौरव मेघवाल और पायल खत्री उदयपुर से, फैजान खान हरदोई यूपी से, अनिल सिंह, सोमनाथ कानगुड़े अहमदनगर महाराष्ट्र से और अनूप राज, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।